ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने रोड शो और जनसभाएं की। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और मीटिंग रिट्रीट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यातायात व्यवस्था के संबंध में परामर्श जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ साथ राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल और निर्दलीय प्रत्याशी तथा प्रमुख नेता रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम कस्तूरबा नगर निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो किया और कालकाजी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर यमुना जल के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने और झूठे दावे करने का आरोप लगाया।
आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे।
वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजेंद्र नगर, मंगोलपुरी और विकासपुरी में प्रचार किया। उन्होंने यमुना की सफाई और शहर की खराब सड़कों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला।
सड़कें कितनी खराब है अंदाजा लगा सकते हैं क्या? ये दिल्ली के अंदर की सड़कें होनी चाहिए थी क्या? सीवर सड़कों पे बह रहा है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज घोंडा में एक जनसभा की और इस बात को दोहराया कि शहर के लोगों को जीरो बिजली बिल मिलना जारी रहेगा।
मैंने कहा था बिजली फ्री करूंगा, फ्री कर दी। मैंने कहा था पानी फ्री करूंगा, पानी फ्री कर दिया। मैंने कहा था बस फ्री करूंगा, बस फ्री कर दी। जितनी योजनाएं कह रहा हूँ सारी पूरी करूंगा।
वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्वास नगर में रोड शो किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शाम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया और मुख्यमंत्री के रूप में अपने आवास पर कथित भव्य खर्च को लेकर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया।
केजरीवाल जी पहले आए थे, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं तो ये सच्चाई है।
एक अन्य कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए बादली क्षेत्र में रोड शो किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामलों में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 774 मामले दर्ज किए हैं। इनमें 374 गैर लाइसेंसी हथियार और 453 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 68,000 लीटर से अधिक शराब, 72 करोड़ रुपए से ज्यादा के 158 किलोग्राम मादक पदार्थ और 7,60,00,000 से अधिक की नकदी भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि 7 जनवरी से अभी तक 24,000 से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर तथा आबकारी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। सुश्री आतिशी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को बताया है कि हरियाणा की तरफ से यमुना में विषैला पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कर इस मामले में उचित फैसला लेने का भरोसा दिया है।
ये तो इजीली मेजरेबल चीज है और हम बिल्कुल तैयार हैं कि अमोनिया कितना है हरियाणा में, कितना दिल्ली में एंटर हो रहा है, उसका मेजरमेंट जरूर होगा।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दूसरे राज्य की सरकारों पर दोष डालने का आरोप लगाया है। श्री सचदेवा ने कहा है कि श्री केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए यमुना को साफ नहीं कराया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है।
यमुना में सफाई आपने नहीं की, गंदा पानी आपने दिया, लोगों को मारने का काम आपने किया। जिस हरियाणा सरकार पर या जिस हरियाणा पर आप दोष लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं कि आप उसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हो, उसी धरती ने आपको जन्म दिया है, उसी धरती का नमक खा के आप बड़े हुए हो। डराकर, धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीत जाते अरविंद केजरीवाल।
भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा सरकार पर यमुना के जल को प्रदूषित करने के आरोप के मामले में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, भूपेंद्र यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य नेताओं के पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात करने के बाद आम आदमी पार्टी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। इस दौरान श्री यादव ने बताया कि भाजपा ने चुनाव आयोग से श्री केजरीवाल पर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से पत्र लिखकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई करने की मांग की है। श्री दीक्षित ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यमुना के पानी को लेकर जो टिप्पणी की है, उससे दिल्ली की जनता के बीच एक डर का माहौल पैदा हुआ है। संदीप दीक्षित ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि श्री केजरीवाल ने चौंकाने वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है।
मेरे हिसाब से ये बहुत गंभीर आरोप है और इसलिए मैंने एलजी साहब को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। मुझे तो लग रहा था स्वयं ही सरकार जो इसका संज्ञान कल ही लेगी कि आप इस पर इमीडिएटली हाई लेवल इंक्वायरी करिए। अगर इल्जाम सही निकलता है तो हरियाणा सरकार पर इमीडिएटली एक्शन लीजिए, और नहीं है और ये लगता है कि बिल्कुल झूठ बोला गया आतिशी जी और केजरीवाल जी द्वारा, जो ज्ञात होता है सीओ जल बोर्ड जो है उनकी चिट्ठी से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उन पर केस होना चाहिए।
आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी द्वारा चुनाव व्यवस्था में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए 5 फरवरी को मतदान वाले दिन बसों का संचालन सुबह 4 बजे से किया जाएगा। डीटीसी ने बताया है कि इन बसों का संचालन शहर के प्रमुख 35 मार्गों पर किया जाएगा। बसों से संबंधित जानकारी डीटीसी के हेल्पलाइन नंबर 0114140000 पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अगले महीने की 1 तारीख को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। आगामी बजट से उम्मीद की जा रही है कि ये ज्वलंत घरेलू और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं और राजकोषीय कार्य नीतियों को उजागर करेगा। विशेषज्ञों और आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार सरकार देश में सुदृढ़ ढांचा बनाने पर बल देते हुए विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय बजट से पहले आकाशवाणी समाचार बजट से विशेषज्ञों और लोगों की अपेक्षाओं के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के परिसंघ फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने कहा कि केंद्रीय बजट को विकास के दीर्घावधि पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का सिलसिला जारी रखना चाहिए।
बजट में जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ लीवर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। सो उसमें मेजर जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज जो एड्रेस करने वाले हैं वो है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स का फर्दर ग्रोथ। जो करंट टैक्स स्ट्रक्चर है और रेट्स हैं इस तरह से रैशनलाइज किया जाए ताकि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इम्प्रूव हो और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ जाए।
भारतीय उद्योग संघ CII की ICTE समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार ने उम्मीद जाहिर की कि बजट में विनिर्माण और रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
उद्योग जगत और CII में हमारी जो प्राथमिकता है दो चीजों पर है। एक कि इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट है उसको फिर से 7-7.5% पे लाया जाए। हम चाहेंगे कि इस बजट में कुछ टैक्सेस में कमी लाई जाए, टैक्स स्लैब को कम किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है हमारे निर्यात का दूसरा स्तर पे है तो हम चाहते हैं कि इसमें हम और योगदान करें।
गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट कल नई दिल्ली में विजय चौक में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस बार सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों की धुन पर 30 कलाकार दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। बीटिंग रिट्रीट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर एक परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस के अनुसार विजय चौक कल दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने बताया कि रफी मार्ग, रायसीना रोड, दारा शिकोह रोड के चारों ओर कृष्ण मेनन मार्ग के चारों ओर और सुनहरी मस्जिद के चारों ओर से विजय चौक की ओर तथा कर्तव्य पथ पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई और इनमें से 1,80,000 लोगों की मौत हुई। आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट अभय के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 66% मौतें 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग में हुई। श्री गडकरी ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए माल भाड़े को कम करने पर जोर दिया। श्री गडकरी ने ट्रक ड्राइवरों की संख्या बढ़ाने को भी कहा क्योंकि देश वर्तमान में 22 लाख ड्राइवरों की कमी से जूझ रहा है।
कॉस्ट कम करना ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक समस्या ये है कि 100 ट्रक के पीछे हमारे पास 75 ड्राइवर है और इसका कारण ड्राइवर की कमी है, 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। और इसमें फिर ड्राइवर्स की समस्या ये कि अगर हम लोग ये फिक्स आवर कर देंगे तो उसके पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर की संख्या बढ़ाए।
दिल्ली के बुराड़ी में 4 मंजिला आवासीय इमारत गिरने की दुर्घटना में अब तक 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये इमारत कल शाम लगभग 7 बजे ढह गई थी। अग्निशमन विभाग ने बताया कि 15 से अधिक दमकल गाड़ियां और कई एम्बुलेंस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने मीडिया को बताया कि मलबे में लगभग 12 से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि पुलिस, अग्निशमन विभाग, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम घटनास्थल पर मौजूद हैं और बचाव अभियान जारी है। प्रयागराज के महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा अमृत स्नान होगा। इस दिन अमृत स्नान बहुत शुभ माना जाता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मेला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल और नो वीआईपी जोन घोषित किया गया है। आपात स्थिति में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पुलिस और विशेष डॉक्टरों की टीमें भी 24 घंटे तैनात हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा अधिक रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई गई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा है कि रेलवे ने पहले से तय विशेष ट्रेनों के अलावा 60 और विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और अब मौसम। दिल्ली में आज दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने रोड शो और जनसभाएं की। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और बीटिंग रिट्रीट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यातायात व्यवस्था के संबंध में परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।